الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، صدق الله العلي العظيم. معزز خواتین و حضرات، یہ جوڑ جو مقرر کیا گیا ہے، یہ ایک ہنگامی طور پر مقرر ہوا تھا. پہلے ہمارا ارادہ نہیں تھا، کہ وقت تھوڑا ہے، مہینہ ابھی پورا نہیں ہوا، بلکہ شاید بس جسٹ پورا ہو رہا ہو، اور ایسے موقع پہ دلچسپی کم ہو سکتی ہے. لیکن پھر حج کا سفر اور کچھ اہم یعنی چیزیں اس میں آ رہی ہیں اس سے پہلے، تو اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت، یہ خواتین کی طرف سے ہی یہ مطلب یعنی وہ آیا، ریکویسٹ آئی کہ جوڑ ہونا چاہیے. اس وجہ سے جوڑ کو مقرر کر دیا گیا. اصل میں بعض مواقع بہت ہی اہم ہوتے ہیں، بعض مقامات بہت اہم ہوتے ہیں، بعض شخصیات بہت اہم ہوتی ہے، بعض کام بہت اہم ہوتے ہیں. موقع شناسی، محل شناسی، مردم شناسی، یہ تینوں صفتیں انسان کے اندر ہو تو انسان دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. تو یہ مواقع جو ہمیں اللہ پاک دے رہے ہیں، اس میں جو اللہ پاک نے رکھا ہے، اگر کسی کے پاس اس کا علم ہو تو اور ہمت بھی کرے، تو ان مواقع سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. مثلاً لیلۃ القدر، یہ جو ہزار مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے. اب اگر کوئی کسی کو پتہ ہونا کہ لیلۃ القدر کیا ہوتا ہے یا لیلۃ القدر کب ہوتا ہے ہوتی ہے، اس کے بارے میں علم ہی نہ ہو، تو ظاہر وہ بھی محروم ہو سکتا ہے. اور کسی کو پتہ ہو لیکن ہمت نہ ہو، تو وہ بھی محروم ہو سکتا ہے. اور اگر کسی کے اندر ہمت بھی ہو لیکن ماحول خراب ہو، تو بھی محروم ہو سکتا ہے. اس وجہ سے علم بھی ہونا چاہیے، ہمت بھی ہونی چاہیے، ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے. اب یہ جو جوڑ کا سلسلہ ہے، یہ اصل میں ماحول کو پرووائڈ کرنے کے لیے بھی ہے، کہ ماحول اس سے پرووائڈ ہو جاتا ہے. جتنے بھی لوگ آتے ہیں، ایک خاص نیت لے کے آتے ہیں، اور وہ نیت یہاں کچھ دین کی بات سیکھنے کی ہے. کیونکہ یہاں ہمارے ہاں الحمدللہ رسومات تو ہوتے نہیں ہیں کہ ان چیزوں کے لیے لوگ آئیں، نہ کھانے پکانے کی یا مطلب اس قسم کی چیزوں کی طلب کوئی لے کے آ سکتا ہے، کیونکہ یہاں یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی ہیں. تو جو بھی ہوتا ہے وہ صرف دین کا سیکھنے کا جذبہ ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات یہاں پر چل نہیں سکتی. نتیجتاً جو بھی لوگ آتے اخلاص کے ساتھ آتے، اور اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے آتے. تو اس وجہ سے ان کے آنے کی برکت سے اللہ جل شانہ ایسا انتظام فرما دیتے ہیں کہ لوگوں کے لیے جو مفید چیزیں ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، چاہے زبان پر آ جائے، چاہے کتاب میں آ جائے، چاہے آپس میں بات چیت کرنے سے ان کی آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ انتظام فرما دیتے ہیں. یہ ماحول کا فائدہ ہے، مطلب یہ ماحول کا فائدہ ہے. دوسری بات، اس سے علم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. ابھی جیسے بات ہو رہی ہے قرآن اور سنت کے مطابق جو بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے اس سے ہمیں علم ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ غیب پر منحصر ہے، اس کا مشاہدہ ہم نہیں کر سکتے، اس کا مشاہدہ ادھر ہوگا اور عمل ادھر ہوگا. یعنی اللہ جل شان جو چیز جہاں رکھی، اب مثال کے طور پر ایک الماری ہے، اس میں کتابیں رکھی گئی ہیں مختلف. اب جو کتاب جس خانے میں رکھی ہوئی ہے، آپ اس خانے کو چھوڑ کر باقی تمام خانوں میں تلاش کریں، وہ کتاب ملے گی؟ ظاہر وہ کتاب تو وہاں نہیں ملے، کیوں ادھر رکھی نہیں گئی ہے، تو کیسے آپ کو وہاں مل سکتی ہے؟ اسی طریقے سے آخرت جو ان چیزوں کے لیے ہے، تو وہی چیزیں آخرت میں ملی. مثلا جنت اور دوزخ وہاں پر ہے، مشاہدہ وہاں پر ہے. ہاں جی، یہ چیزیں تو ادھر ہیں، نتیجہ ادھر ہے. اچھا، اور یہاں پر عمل ہے. اگر کوئی وہاں عمل کرنا چاہے تو عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ عمل وہاں رکھا نہیں ہے، ادھر عمل نہیں ہے. इस वजह से अगर कोई वहाँ अमल करना चाहते है, 100% अमल ठीक करना चाहता हो, कुछ भी फ़ायदा नहीं, कुछ भी फ़ायदा नहीं। हाँ जी, फ़ायदा करें अमल का तो इधर है। हाँ जी, तो अमल के लिए इस दुनिया को बनाया हुआ है और आखिरत को नतीजे के लिए रखा गया है, लिहाजा जो चीज़ जहाँ पर है वहीं तलाश करो, फिर फ़ायदा होगा। तो अब यह है कि अमल का मौका इधर है लेकिन चीज़ आई वहाँ से, तो इसका मतलब यह है कि हमें उन लोगों से सुनना पड़ेगा जो वहाँ की बात जानते हो, यानी पैगंबरों से हमें मालूम होगा, या उलमा जो पैगंबरों की बातों को जानते हैं उनसे मालूम होगा, या मशायख जिन्होंने इस पर मेहनत की होती है उनसे मालूम होगा। अलगरज यह है कि ये चीज़ उनसे मालूम होगा, उनसे पता चलेगा जिन जिनके पास ये है। हाँ जी, वरना ऐसी बात है कि मतलब अगर मिसाल के तौर पर वैसे मुफ्त में बात करना चाहते हैं तो बात करते रहेंगे, उसका कोई नतीजा नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये चीज़ें मेरे ख्याल की बुनियाद पर है ही नहीं, ये चीज़ें तो ख़बर की बुनियाद पर है। अगर किसी चीज़ की खबर दी गई है तो ठीक है, उसको हम बतौर ख़बर मतलब बता सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ की खबर नहीं दी गई मेरे ख्याल में, तो मेरे ख्याल में बात चलती नहीं। आप सल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक में अगर कोई राय से तफसीर कर ले, अपनी राय से तफसीर कर ले किसी हिस्से का, तो बेशक उसने सही भी किया हो तब भी गलती की है। ये बात लोगों को ज़रा मुश्किल लगती है समझना, तो एक मिसाल देता हूँ। मसलन केमिस्ट का दुकान है, तो केमिस्ट से मतलब ये बग़ैर डॉक्टर से पूछे अगर किसी ने दवाई उठाई और उसको इस्तेमाल किया किसी बीमारी के लिए, तो उसको कहा जाएगा तूने अगर सही दवाई भी उठाई है ना तब भी तूने गलती की। तूने अगर सही दवाई भी इस्तेमाल की तब भी तूने गलती, उसकी वजह यह है कि तरीका ठीक नहीं है। तूने बगैर डॉक्टर के पूछे जो दवाई इस्तेमाल की, ठीक है उस वक्त तो फ़ायदा हो गया, आइंदा इसकी आदत हो जाएगी, ऐन मुमकिन है कोई ऐसा नुकसान हो जाए कि फिर इसके बाद उसकी तलाफी ना हो। हाँ जी, वाक़ता बाज़ दफ़ा यानी ऐसी बातें हो जाती हैं जो जो अनहोनी होती है लेकिन हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को हर चैनल को सही अंदाज में लेना पड़ेगा, हर चैनल को सही अंदाज में लेना पड़ेगा, वरना फिर क्या है, नुकसानात का अंदेशा है, नुकसानात का अंदेशा है। तो बहरहाल ये कि पहले तो इलम हासिल करना है, तो इलम भी हमें ऐसे ही जगह पर हासिल हो सकता है जहाँ इस किस्म की बातें हो रही हो, और माहौल भी इधर ही है। हाँ जी, माहौल की अब हिम्मत की बात है तो हिम्मत करनी पड़ेगी, वो हिम्मत तो अपने अंदर से होती है, वो बाहर से नहीं मिलती। वो हिम्मत अल्लाह पाक ने जो वसाइल तुम्हें दिए है उनको इस्तेमाल करने की हिम्मत होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर किसी के पास गाड़ी है लेकिन वो ड्राइव नहीं कर सकता, तो जाहिर मतलब है कि उसके लिए गाड़ी बेकार है। हाँ जी, तो हाथ पांव है लेकिन वो हिम्मत उसके अंदर नहीं है तो वो नहीं कर सकता, वो बेकार है उसके लिए वो चीज़। तो इस वजह से हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी, और हिम्मत पैदा करने के लिए मतलब यह है कि तदरीजी तरीका जो बुज़ुर्गों के यहाँ चलता है तरबियत का, वो तरीका होता है। तो तरबियत भी ऐसे माहौल में होती है, तो इसका मतलब है तीनों चीज़ें यहाँ पर जमा मतलब हो जाती हैं। इस वजह से जोड़ जो रखा गया है इसमें तीनों मकासद हैं। देखा देखी भी इंसान को तौफीक मिल जाती है, खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है, जब कुछ और लोग को अमल करते हुए इंसान देखता है तो आदमी को ख़ुद भी हिम्मत हो जाती है। मेरे नाना जो हैं वो 108 साल की उम्र में फौत हुए, और आखिरी नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसने खड़े होकर पढ़ी। हाँ जी, तो मेरे नाना की जो बहन थी उससे गालिबन कुछ 15-16 साल छोटी थी, तो वह हमारे गाँव आ गए, तो वो जो हमारी चची लगती थी, वो जो उनकी बहन थी वो मेरी चची लगती थी, तो वो काफ़ी अरसे से बैठ कर नमाज पढ़ती थी, जाहिर मतलब 80 से ऊपर होती तो बैठकर वो नमाज पढ़ती थी। तो वो नाना साहब जब हमारे घर जब आया तो उसने खड़े होकर जब नमाज पढ़ी तो उस दिन वो भी खड़े हो गए। तो हम सब लोग हैरान हो गए, हमने कहा देखो ये बिल्कुल वो खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है, कि मतलब उनने देखा तो ये जाहिर मतलब उसको भी हिम्मत हो गई। हमारे जहांगीरा के मौलाना अब्दुल हनान साहब ये 96 साल की उम्र में फोत हुए, तो वो आलिम थे, देवबंद के फाजिल थे, वो जो है कश्मीर गए, कश्मीर गए तो कश्मीर में मतलब ज़ाहिर वो एक आलिम थे, वो ज़ाहिर काफ़ी यानी बूढ़े बताए जाते थे और बड़े ही यानी बड़े आलिम समझे जाते थे। इनको बताया गया तो उन्होंने कहा मैं तो उनसे मुलाकात करता हूँ, ज़ाहिर फिर और देवबंद के फाजिल भी थे बताए थे, तो उन्होंने कहा फिर तो ज़ाहिर कम अज़ कम हम एक दूसरे से देख लेंगे कि कौन है और किस किस तरह है, मतलब मालूम हो जाएंगी। तो जिस वक्त वो हज़रत उनके पास चले गए तो हज़रत ने उनसे जब बातचीत की तो पता चला कि वो तो उनसे 12 साल छोटे हैं लेकिन वो साहिब फराश थे और उठ नहीं सकते थे, बात भी बड़े मुश्किल से करते थे। हाँ जी, सारे लोग उनकी खिदमत भी करते थे, बुजुर्ग आदमी थे। हाँ जी, तो ये जब उनने एक दूसरे से पूछा कि आप कौन से सन में थे और कौन से उस्ताद थे और ये थे वो, तो पता चला कि वो तो 12 साल पहले की बातें बता रहे हैं। तो उनने कहा कि मैं तो आपसे 12 साल, तो उनको भी हिम्मत हो गई, वो भी बैठ गए। इसका मतलब है कि ये जो बात है ना कि एक दूसरे को देख कर देख के लोग असर हासिल कर लेते हैं, तो ये जो जोड़ वगैरह मतलब ये यानी एहतमाम किया जाता है उसमें बुनियादी बात है ये कि एक दूसरे को देख कर कुछ ना कुछ हिम्मत हो जाए, कुछ काम करने की हिम्मत हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अभी आपको तफसील से बाद में बताया जाएगा आखिरी बयान में जो, क्योंकि ये तो सिर्फ इफ्तिताह है जो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, तो ये जो है ना मतलब ये बात है कि इसमें आपको बता दिया जाएगा कि ये माशाल्लाह ये जो महीना है इसमें एक यानी एक रोज़े का अजर इब्तदाई अशरे में वो 1 साल के रोज़ों के बराबर है। अच्छा, अब देखो कि शव्वाल के रोज़ों का रिवाज है, शवाल के रोज़ों का रिवाज है, हालांकि उसकी सनद भी इतनी मजबूत नहीं है और उसका अजर भी इसे कम बताया गया है। उसका अजर ये है कि अगर कोई 6 रोज़े रख ले तो रमज़ान के रोज़ों के साथ मिलाकर उसने गोया पूरे साल के रोज़े रखे, गोया कि उनके हर उनका हर रोज़ा जो है वो 10 रोज़ों के बराबर है। आप ये कह सकते उसका हर रोज़ा 10 रोज़ों के बराबर। इसके बारे में बताते इसकी हदीस भी शरीफ भी मजबूत है। इसका मतलब जैसे इसका बताया कि एक रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर है, वो एक आप एक से लेके 8 रोज़ों 8 ज़िलहज तक अगर रोज़े रखेंगे तो इसमें गोया कि आपने 8 साल रोज़े रखे। और 9 ज़िलहज का बता रहे हैं कि 1 साल पहले का और 1 साल आइंदा के बारे में फरमाते हैं आप सज़म की मुझे उम्मीद है कि इसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, गुनाहों के लिए कफ़ार हो जाएगा। अब इतनी मजबूत अहादीस शरीफा और इतनी ज़्यादा जो मतलब सवाब की जो चीज़ है उसका रिवाज नहीं है तो पता ही नहीं चलता, लोगों को पता ही नहीं था कि ये भी रखना है। नहीं, कभी हमने लोगों को बात करते भी नहीं सुना। हाँ जी, हत्ता कि हरम शरीफ में भी इसके दस्तखान नहीं लगते, हालांकि शवाल के रोज़ों के दस्तखान लगते हैं। हाँ जी, मतलब वहाँ बाकायदा रोज़ों की तरह दस्तखान लगते हैं, मतलब शवाल के रोज़ों के, लेकिन इसका पता नहीं चलता। तो इसका मतलब ये कि नहीं कोई है बात कि इस पे जोर नहीं दिया गया, यानी मतलब इसके इसका रिवाज नहीं है, तो इसका रिवाज बनाना चाहिए, रिवाज बनाना चाहिए। तो रिवाज बनाने वालों को उन तमाम लोगों के रोज़ों का अजर मिलेगा जो बाद में रखेंगे। हाँ जी, क्यों उजारे मतलब है कि एक चीज़ है जो पहले मतरूक हो चुकी है, मतलब नहीं है, और किसी के मतलब जारे के बात करने से, किसी के अमल करने से, किसी के बताने से अगर किसी को तौफीक हो रही तो इंशाल्लाह आइंदा जितने भी यानी मतलब लोग रोज़े रखेंगे वो वाले उन सब के अजर उनको मिलेगा। तो लिहाजा इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह बात यहीं से चली थी और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक कामयाबी भी हो गई है, मतलब यह कि काफ़ी लोग अब इसको रखने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी एक कामयाबी हुई कि ख़वातीन में इतकाफ़ का सिलसिला भी माशाल्लाह चल पड़ा है, यानी रमज़ान शरीफ में अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ख़वातीन इतकाफ़ करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन में कुर्बानी का सिलसिला भी चल पड़ा है, आज माशाल्लाह अब कुर्बानी भी माशाल्लाह करने लगी। ये सब चीज़ें बताने से पता चलता है, मतलब ज़ाहिर अगर कोई नहीं बताया तो किसी को क्या इलम। अब मैं इतनी लंबी चौड़ी तकरीर कर लूँ, रसल बात को दरमियान पर ला मुझे ज़ुबान पर लाऊँ ही नहीं तो मेरी तकरीर का क्या फ़ायदा, और मैं कुछ भी ना कहूँ लेकिन असल बात कर लूँ मतलब जिस वक्त, तो मुमकिन है किसी को तो तौफीक हो जाए ना। हाँ जी, मैं इस वक्त जिस वक्त शुरू किया था अब वहाँ बयान ख़याबान में बयान शुरू हुए थे हमारे, वहाँ जब हमने बयान शुरू कर लिए तो एक बड़े मियाँ जो उर्दू के प्रोफेसर थे रिटायर्ड, उसने मुझे कहा शाह साहब आप बिल्कुल बात सही करते हैं, ये हज़रत तानवीर मुसीब के मुआसे की बात करते हैं और ये इसमें बड़े उलूम हैं, मैंने ये पढ़े हुए हैं वाकई, लेकिन जिनके जिन जो तुम्हारे सामने बैठे हैं उनके सरों के ऊपर से गुजर रही है बात, इनको पता नहीं चल रहा। आप खाम खाम ठीक है जी आपको सवाब मिलेगा, लेकिन इनको कुछ पता नहीं चल रहा। तो मैं मुस्कराया, मैंने कहा कि ज़ारे मतलब इतने बड़े आदमी हैं, मैं इनके साथ क्या बात करूंगा कि नहीं ऐसा होता है, यो नहीं होता। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उस वक़्त से जो लोग अटेंड करते आ रहे हैं उनको समझ आ रही है, नहीं आ रही, आ रही सारी चीज़ें समझ में आ रही। तो माशाल्लाह ये चीज़ें जो हैं बहज़र मुझे सब लोग मकतूबा शरीफ कितने मुश्किल बताए जाते थे, बहुत मुश्किल बताया जाए और है भी मुश्किल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ख्वातीन को भी समझ आने लगी। हम मुझे मेरे पास जो सवालात आ रहे हैं या उनके बारे में कुछ कमेंट्स आ रहे हैं उससे मुझे पता चला कि ख्वातीन तक को समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके जो मजामीन हैं ये अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैदान सज रहा है, मैदान सज रहा है। मतलब यह है कि हमें हिम्मत करनी चाहिए, हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, हमें अल्लाह के भरोसे पर काम करना चाहिए। बाकी तो किस्मत किस्मत की बात है, अगर कोई पीछे होता है तो उसकी अपनी किस्मत है, कोई आगे होता है तो उसकी अपनी किस्मत है, लेकिन वो जो है ना वो उनके अल्ताफ शहीदी तो है मायल सब पर, तुझसे क्या बेर्थ अगर तू किसी काबिल होता। हाँ जी उदार मतलब अल्लाह ताला का तो रहमत बरस रही है, अल्लाह जल्ला शानू की कबूलियत के दरवाजे तो खुले हुए हैं। हाँ जी कोई हिम्मत करता है तो उसको कबूल फरमाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह की तरफ से कोई कमी हो। हम लोग कुछ करें, हम लोग कुछ करें, तो मैं तो बस यही आवाज़ लगा रहा हूँ आज इस नीयत से, पहुँचाने वाले अल्लाह हैं, समझाने वाले अल्लाह हैं। हाँ जी हमारा काम है समझाना, बताना, जितनी हमारी बस है उसके मुताबिक बेहतर तरीके से बताना, यही हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। वमा अलैना इल्लल बलाग का मतलब क्या है, वमा अलैना इल्लल बलाग का मतलब ये है कि हमारे ऊपर तो सिर्फ पहुँचाना है, और ये वल्लाह आलम बिस्सवाब जो कहते हैं उसकी ये किसका मतलब क्या है, यानी हकीकत हाल असल तो अल्लाह को पता है, वही सब असल जानता है, मैं जो बात कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरे मालूमात तक है, असल बात अल्लाह ताला को पता है। अब अगर कोई असल बात मुझसे मख्फी रह गई हो तो दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे नसीब फरमा दे, मुझे पहुँचा दे, और वैसे भी होता है पहुँच जाती है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग मुझ तक पहुंचने में हिम्मत और कोशिश करते हैं फरमाते मैं ज़रूर बिज़रूर उनको हिदायत के रास्ते सुझा दूँ। हाँ तो वादा भी है, तो इसके बाद फिर आदमी क्यों ना करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग माशाल्लाह यहाँ पर आई हैं, तो आपका आना मुबारक हो और आपको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे कि इस महफिल से, इस काम से, इस मजलिस से, इस चोट से आप काफ़ी फ़ायदा उठाएं। मैंने कसदन कुछ बातें ज़्यादा की क्यों, हालांकि मैं 15 मिनट से बात ज़्यादा नहीं करता इस वक्त, क्योंकि मुझे पता है कि नीचे बात शुरू होने वाली है, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि शायद अभी ख़वातीन बहुत थोड़ी तादाद में आई है। हाँ जी तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मेरी बातें अगर कोई इतना ज़्यादा नहीं सुनते हो तो बाद में भी मौका मिल जाएगा, लेकिन जो इसके बाद आपका प्रोग्राम हो, जो मतलब ज़्यादा कीमती बातें जो आज बताई जाएंगी इंशाल्लाह, कम अज़ कम उस तक पहुँचने वाले लोग पहुँच जाएँ, जैसे मुफ्ती साहब का भी इंशाल्लाह यानी बयान होगा, तो इसमें कम से कम ज़्यादा ख़वातीन हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानू हम सबको इसका जो असल है वो पहुंचा दे, और जो जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं अल्लाह जल्ला शानू उस की वजह से किसी को महरूम ना कर दे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।